समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। और आज के इस अंक में हम देश और दुनिया के समाचारों का रुख करेंगे, महानगर की खबरें होंगी और जानेंगे मौसम का हाल। इसके अलावा अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। टुडे मी एंड फरहत आर हियर टू प्रेजेंट आज सवेरे, एंड टुडे देयर इज यू नो सेंट ऑफ पेट्रिकोर इन द एयर बिकॉज इट रेन्ड। सो
सुबह का जो मौसम है वो काफी खुशनुमा हो गया है, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही मुझे लगता है शगुन बारिश हो रही है। तो ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है और पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं, मुझे लगता है मौसम अपने आप में ही बेहतरीन हो गया।
राइट, द अर्थी प्लेजेंट स्मेल इट इज देयर द पेट्रिकोर, एंड वेल यस वी आर पम्प्ड अप एंड वी विल बिगिन आवर प्रोग्राम विद हेडलाइंस फर्स्ट। ऑल्सो वी विल हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स, वी विल प्रोवाइड यू those as well, and the historical information which is related to today. Today is 15th of March. We will begin now.
जी बिल्कुल, सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। right. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू होने वाले माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 प्रतियोगिता के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट पर चर्चा करने और विकसित भारत के निर्माण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवा प्रतिभाओं को सहभागी शासन और आर्थिक नियोजन से जोड़ना भी है, और इसके साथ ही ये पहल नीति निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका को मजबूत करना और 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना भी है। माई भारत बजट प्रतियोगिता 2026 में 12 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है और 47,000 निबंध जमा किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2026 व्यापक रूप से युवा शक्ति प्रेरित बजट माना जा रहा है। बजट शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार और भविष्य के लिए तैयार विकास के अवसरों में निवेश के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल देता है।
Two Indian flagged vessels, Shivalik and Nanda Devi, have crossed the Strait of Hormuz safely yesterday. Special Secretary at Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Rajesh Kumar Sinha, informed about this while addressing the inter-ministerial media briefing in New Delhi yesterday. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that there is no dry out at any retail outlets or LPG distributorship and sufficient diesel and petrol is available. She urged citizens to refrain from panic booking of LPG cylinders and only book when required.
Last delivery say
there must be a minimum gap of 25 days between the last delivery and the next booking in urban areas, and 45 days in rural areas. An appeal to all citizens, please use the digital booking tools available to you. There is no need for anyone to go to a distributor and stand in line to book a cylinder or to receive the delivery.
Cylinder ki delivery le.
और शगुन, जैसा कि हम जानते हैं कि देश जो हमारा है कृषि प्रधान देश है, True. तो ऐसे में जो गुजरात से एक खबर आ रही है वो बहुत ही रोचक खबर है। कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को समर्पित प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की योजना करने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने, और इस योजना के अंतर्गत चयनित गांवों के बड़े क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से रासायनिक मुक्त कृषि में परिवर्तित किया जाएगा। कृषि मंत्री जीतू बाघानी ने कहा कि राज्य सरकार इन गांवों के किसानों को बुनियादी प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष जमीनी सहायता प्रदान करेगी। ये कृषि समूह सीधे बाजार प्रणालियों से जुड़े होंगे, इससे किसानों को अपनी रासायनिक मुक्त फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा जनता के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है, और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी इससे सृजित होंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी लाभकारी पहल है।
Right, Farhat. Well, there is another update from Gujarat only, and this is from the space research sector. So, Gujarat has marked a historic milestone in the space research sector with the successful launch of the state's first sounding rocket at Dholera yesterday, carried out by the Ahmedabad-based startup. This single-stage suborbital rocket lifted off from a temporary launch complex at 1 p.m., reaching an altitude of approximately 3 kilometers. The rocket also carried a mini satellite designed to collect essential weather data. Under the Make in India initiative, the rocket's airframe was developed using carbon fiber and advanced composites.
और वहीं आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर ई अभियान के अंतर्गत करदाताओं को भेजे गए कुछ ईमेल संदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. विभाग ने कहा है कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ करदाताओं को ऐसे ईमेल मिले हैं जिनमें महत्वपूर्ण लेनदेन के गलत विवरण दर्ज थे. ऐसे करदाताओं से पिछले ईमेल को अनदेखा करने का अनुरोध किया गया है. विभाग की इस त्रुटि को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और करदाताओं को ये सलाह दी गई है कि वो अपने लेनदेन के सटीक विवरण की जांच के लिए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और कंप्लायंस पोर्टल के अंतर्गत ई अभियान टैब का उपयोग करें.
सो नाउ वी विल टेल यू अबाउट अ फिल्म फ्रॉम सिक्किम. दिस इज शेप ऑफ मोमो. The film, the name of the film is Shape of Momo, continues its successful journey on the international festival circuit, adding new selections across Europe after its earlier screening at the Glasgow Film Festival. We have a detailed report.
Sikkimese film Shape of Momo, directed by Tribeni Rai, continues its successful journey on the international festival circuit, adding new selections across Europe after its earlier screening at the Glasgow Film Festival. The film recently opened Sea Movie in Italy, a festival dedicated to author, cinema, literature and contemporary thought. Later this month, it will also compete at the 35th African, Asian and Latin American Film Festival in Italy, where it has been selected for the Windows on the World feature film competition. Currently, director Tribeni Rai and producer of the film Geeta Rai are attending the Spirit of Fire International Debut Film Festival at Khanty Manisysk in Russia, which is dedicated to debut films by emerging directors from various nations. Shape of Momo will next travel to Cinema Asia Film Festival in Amsterdam, where it will have its Dutch premiere in April. Tribeni Rai is also making final round of preparations for the All India release of Shape of Momo with a grand Gangtok premiere. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok.
वहीं पीपल्स पद्मॉन आकाशवाणी श्रृंखला में हम लेखक श्री अशोक कुमार हल्दर से बातचीत करेंगे. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए श्री अशोक कुमार हल्दर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.
कभी नहीं सोचा कि हमारा एक पुरस्कार मिलेगा. हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया हमारा इंस्पिरेशन बड़ा, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है. समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा, क्या करना है और क्या नहीं करना है.
ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा. इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है.
The government has refuted a video circulating on social media which claims that Iran has launched a heavy strike on an Indian oil tanker. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, informed that the video is fake and AI-generated. PIB has urged citizens not to fall for any such misleading content and to verify the information from credible sources before trusting and sharing it.
और शगुन, जैसा कि राजधानी दिल्ली में तो आज सुबह मौसम अच्छा हो ही गया है और अन्य राज्यों में भी मौसम के बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है, जिसे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने के अनुमान है.
The Board of Control for Cricket in India, BCCI, will celebrate the achievements of Indian cricket stars and contributors at the prestigious Naman Awards 2026, scheduled to take place in New Delhi today. At this year's ceremony, cricket legends Roger Binney and Rahul Dravid will receive the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award, the highest honour given by the BCCI for exceptional service to Indian cricket. Meanwhile, former India women's captain Mithali Raj will be honoured with the BCCI Lifetime Achievement Award for women in recognition of a remarkable impact on women's cricket.
और क्रिकेट के बाद महिला हॉकी की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में कल खेले गए FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल मुकाबले में भारत को इंग्लैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार के बावजूद भारत ने इस साल होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट से चैंपियन इंग्लैंड, उपविजेता भारत और साथ ही साथ स्कॉटलैंड ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। और महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन इस साल 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में पुरुष टूर्नामेंट के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो दोनों महिला टीमों ने जो है उपलब्धि हासिल की है। और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का, जिसमें होंगे समाचार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई से शुरुआत करते हैं।
राइट फरहत, बिगिनिंग विद चेन्नई। Chief Minister of Tamil Nadu M.K. Stalin has written to Prime Minister Narendra Modi requesting an increase in the rice procurement target for the state. He said that during the current season, the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and the National Cooperative Consumers Federation of India procured 36.63 lakh metric tons of paddy compared to 24.17 lakh metric tons during the same period of the previous season. He urged the Prime Minister to revise the procurement target from 16 lakh metric tons to 32 lakh metric tons of rice for the 2025-26 marketing season to support continued procurement and also to ensure timely payments to farmers. Another update from Chennai for our listeners. Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal released 10 e-law books in Chennai. He said that justice should reach every part of the country and therefore benefit every citizen. He explained that people living in remote areas can access legal help through the tele-law service and the Disha scheme. He also said that outdated colonial era laws have been replaced and that the Bharatiya Nyaya Sanhita represents a modern legal framework for the 21st century. The workshop was organized by the Ministry of Law and Justice under the Tele-Law initiative of the Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice Disha Scheme.
और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं शगुन। दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों के दिव्यांग छात्रों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में भाग लिया। इस वर्ष पहली बार नगर निगम के विद्यालयों के 11 दिव्यांग छात्रों ने इस फेस्ट में भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान निगम विद्यालयों के 2 छात्रों ने नृत्य प्रस्तुति दी, जबकि 9 छात्रों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों ने अमृत उद्यान का भ्रमण भी किया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट, निगम विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास जागर तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी गण और शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि वो अपने विद्यालयों के छात्रों, विशेषकर दिव्यांग छात्रों को हर संभव सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये एक शगुन बहुत ही अच्छी पहल है दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सम्मान है उनको देना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो सिर्फ हमारे लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी सीमित मतलब रहना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके।
Now we will head to Bengaluru, Farhat. Union Ministers Mansukh Mandaviya and H.D. Kumaraswamy laid the foundation stone for a 14 crore rupee multi-purpose indoor sports complex at the University of Agricultural Sciences VC Farm in Mandya, Karnataka. The facility is being built under the Khelo India scheme. So speaking on the occasion, Mr. Mandaviya said Mandya has produced many talented sportspersons and the new complex will help develop young athletes and strengthen the district sports culture. During the event, electric vehicles were also distributed to 388 persons with disabilities and in the presence of public representatives and officials. Another update from Bengaluru. The Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry will organize the InnoManthan 2026 knowledge workshops on March 16 and 17 in Karnataka. So the workshops aim to promote entrepreneurship and also startup development among students. Participants will learn about startup basics, business planning, innovation and also building scalable businesses.
और शगुन, राजधानी दिल्ली से एक और खबर मेरे पास है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 मार्च से आयोजित किया जाएगा और इस फिल्म महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्में हंगेरियन सिनेमा पर आधारित होंगी। इस वर्ष के महोत्सव में 18 देशों की 67 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी जो लगभग 20 भाषाओं में होंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हंगरी को केंद्र में रखा गया है। ये फिल्म हंगरी और भारत के बीच एक प्रतीकात्मक सांस्कृतिक सेतु का का काम करेंगी। तो यहाँ पर रुख करना जो है जरूरी हो जाता है, क्योंकि
मूवी बफ्स
दो देशों की बात हो रही है।
राइट, मूवी बफ्स, फिल्म एंथुसियास्ट शुड टेक अ नोट।
जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। अकोला जिला पुलिस द्वारा विकसित तिनेत्र परियोजना को प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुलिस अधीक्षक अर्चित चंदक के नेतृत्व में शुरू की गई ये पहल निवारक पुलिसिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग करती है। सार्वजनिक सुरक्षा और शासन में सुधार के लिए एक अभिनव मॉडल के रूप में इस परियोजना ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में 200 फुट ऊंचे ध्वज स्तंभ का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये स्तंभ क्षेत्र के सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभों में से एक होगा, जिस पर 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। ये पहल नागपुर नगर निगम और लोकमत मीडिया समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है।
नाउ फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन हैदराबाद, तेलंगाना पावर यूटिलिटीज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सप्लाइंग द हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी इन अ सिंगल डे, डिलीवरिंग 341.08 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर ऑन 13th of this month at 11:17 a.m. The state successfully met a peak demand of 18,228 megawatt. The increase in electricity demand and peak load is attributed to rising temperatures and higher agricultural power requirements. The Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka appreciated and specially congratulated the employees of all power utilities for maintaining uninterrupted power supply during this period of high demand.
और अब कोलकाता का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक फैला निम्न दबाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इस प्रणाली और उच्च नमी के कारण आज दक्षिण बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कल बीरभूम, पूर्वी और पश्चिमी बर्धवान, बांकुरा और हुगली जिलों में काल बैसाखी जैसी बारिश हो सकती है। मंगलवार तक बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की जा सकती है।
So now listeners, we will update you one after the other about the weather from the metro cities. First, we are beginning with Chennai. So Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have a mainly clear sky, then becoming partly cloudy towards afternoon or evening. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Now, if we talk about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature, minimum temperature, will be around 20 degrees and maximum will be around 37 degrees Celsius.
और शगुन, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि आज सुबह से ही मौसम में बदलाव महसूस हुआ है। 5 बजे से बारिश हो रही है और दिन भर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, रुक रुक कर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में लेकिन आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में बारिश हो सकती है, दिनभर मौसम ऐसे ही बना रहेगा यानी घिरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
सो नाउ वी विल एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री एंड वी विल टेक यू वे बैक इन टाइम। फर्स्ट वी आर बिगिनिंग विद 44 BC. So Julius Caesar was assassinated on the 8th of March by a group of Roman senators led by Marcus Junius Brutus and then Gaius Cassius Longinus, an event that accelerated the collapse of the Roman Republic and paved the way for the Roman Empire.
और सन 1493 में आज ही के दिन महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस वापस अपने देश स्पेन पहुंचे। 1892 में पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक बैलेट मशीन का इस्तेमाल किया गया।
इन 1877 द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच बिगान एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड।
सन 2002 में बर्सोलिना में 2002 में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और 1985 में पहला डोमेन नाम symbolic.com पंजीकृत किया गया।
In 1934, we are taking you back again. Henry Ford reinforced his famous $5 a day wage policy, which had already originally been introduced in 1914, and then became a landmark movement in modern labor standards and worker welfare. In 1950, now for our listeners, India established the Planning Commission under Prime Minister Jawaharlal Nehru to guide national economic development through 5-year plans. And this body was later replaced in 2015 by Niti Aayog. In 1975 now, India defeated Pakistan 2-1 in the final of the 1975 Men's Hockey World Cup in Kuala Lumpur under Captain Ajit Pal Singh, securing India's first and only Hockey World Cup title. In 2011, protests escalated in Syria as part of the Arab Spring, eventually triggering the long and devastating Syrian civil war. In 2019, well, billions of students across more than 100 countries joined the global climate strike inspired by climate activist Greta Thunberg. And this is the largest youth-led environmental protest in history.
और अब श्रोताओं, हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। लेकिन इससे पहले हम जिस शख्सियत की बात करेंगे शगुन, उससे पहले हम महाभारत का ये अंश सुन लेते हैं।
मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की, ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की, और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र।
बहुत खूब, मैं समय हूँ, इन शब्दों को भला कौन भूल सकता है शगुन। 90 के दशक में हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिनके यहाँ रविवार को ये आवाज न सुनाई देती हो। इस पौराणिक धारावाहिक को लिखा था लेखक राही मासूम रजा ने, जिनकी स्याही से लिखे एक एक अल्फाज का करिश्मा ऐसे था कि महाभारत लोगों के घर घर तक पहुंची।
एग्जैक्टली, सो राही मासूम रजा वॉज अमंग द मोस्ट इन्वेंटिव एंड वर्सटाइल लिटरेरी फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। हिज क्रिएटिविटी फ्लरिश्ड विद इक्वली in the realms of prose and cinema and television, as we can also hear here.
जी बिल्कुल, बहुत बड़े साहित्यकार रहे राही मासूम रजा, और उनका कहना था इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। तो इसके अलावा उनकी एक बहुत ही प्यारी सी गजल है, आइए सुन लेते हैं।
जो बरसों से बुलाया
शगुन, उनका ये भी कहना था, हाँ उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है हमें, हाँ उन्हीं लोगों से दुनिया में शिकायत है हमें, हाँ वही लोग जो अक्सर हमें याद आए हैं।
वाओ, ब्यूटीफुल।
जो दिल था कुछ हंसी ख्वाबों की नगरी, जो दिल था कुछ हंसी
amazing. Listeners, we are also remembering Major Sandeep Unnikrishnan on his birth anniversary. Well, a brave soul who sacrificed his life during the 26/11 Mumbai attacks. Well, he was awarded the Ashok Chakra and for his unmatched courage and selflessness. His heroism continues to inspire generations, reminding us of true patriotism and sacrifice, saluting our real hero.
और अब हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल की, जिनकी उड़ान सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं थी बल्कि भारतीय महिलाओं के आत्मविश्वास और सपनों की उड़ान थी। जी हां, 15 मार्च 1914 को दिल्ली में जन्मी सरला ठकराल ने महज 21 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसकी उस समय कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते थे। साल 1936 में उन्होंने पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और एक दो छोटे पंखों वाले विमान जिप्सी मौत को उड़ाकर इतिहास रचा। सबसे खास बात यह थी कि उस दौर में में वो भी उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनकर उड़ाया। ये दृश्य उस समय के लिए बेहद असाधारण था क्योंकि विमानन के कॉकपिट में आमतौर पर सिर्फ पुरुष ही दिखाई देते थे। सरला की ये उड़ान उस समय के समाज के लिए एक संदेश थी कि आकाश सिर्फ पुरुषों का नहीं बल्कि महिलाओं का भी है।
Right, Farhat, and her journey paved the way for female pilots worldwide, and this remains an inspiration for future generations and will also remain for coming generations as well. And she was just 21 years old when she accomplished this remarkable feat of achieving her historic milestone in 1936 when she earned an A license from Lahore Flying Club, which allowed her to fly solo. So, as Farhat, you told, she was dressed in a sari then. Determined to break social barriers, she proved that Indian women were equally capable of excelling in टेक्निकल एंड एडवेंचरस फील्ड एज वेल।
बिल्कुल शगुन, और ऐसी ही कहानियां जो होती हैं आज भी काफी महिलाओं के लिए साहस भरी होती हैं, आत्मविश्वास पैदा करती हैं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देती हैं।
वेल सेड लिसनर्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग लेस्टर यंग। वेल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जैज, ही केम टू प्रोमिनेंस विद काउंट बेसी बैंड इन कैंसस सिटी इन 1930s. And then he was rapidly recognized as an original talent who was playing in a new style that was created by his own. And at that time, the dominant players, they were other players, but he also emerged as a very technically phrased, the tone and sense of swing that he conveyed through his depth of emotion and intelligence, it was widely acclaimed.
और आज जन्मदिन है मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वो सुपरस्टार रहीं जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि लुक से भी लोगों के दिलों में राज किया। महेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेबाक और नई कहानी पेश कर शोहरत कमाई जो दर्शकों के दिलों से गहराई से जुड़ी। 1970 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्हें अर्थ, सारांश और आशिकी जैसे फिल्मों से बड़ी पहचान भी मिली और इन फिल्मों को समीक्षकों ने भी सराहा। और उसी तरीके से आलिया भट्ट ने भी जो है अपने पिता का नाम रोशन कर कई महत्वपूर्ण फिल्में दी। 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता जिसमें जिगरा शामिल रही, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये सम्मान उन्हें मिल चुका है।
राइट फरत, वेल इमोशनली वल्नरेबल इन हाईवे टू बीइंग पावरफुल माफिया क्वीन इन गंगूबाई काठियावाड़ी एंड वेल अ ब्रेव सिटीजन इन राजी, She never failed to captivate the audience with her remarkable roles and well, one of the most loved stars of this generation. She continues to impress audiences with her versatility and charm.
जी बिल्कुल शगुन, तो क्यों ना फिल्म राजी से उनका ये गीत सुन लेते हैं।
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों, दिलबरों, फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए
Such a beautiful song. It captures these emotional moments perfectly. And also one of another loved movies of hers, which and the audiences have enjoyed. This is like Dear Zindagi. It has been really inspiring and very fresh take on how things they persist and they are today. So we have a dialogue from that movie. Let's listen into that.
सच तो ये है कि हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। सब धुंधला सा लगा। एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कि किसी ने मेरे हाथ से टीवी का रिमोट छीन लिया और मेरे फेवरेट चैनल से कुछ भयानक लगा दिया, समथिंग हॉरिड, और फिर टीवी का रिमोट फेंक दिया।
तो शगुन, अब हमारे कार्यक्रम का जो है वो समाप्ति का समय हो रहा है, तो क्यों ना चलते चलते हम उनकी फिल्म कलंक से उनका ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी
इसके साथ ही वक्त चला है आपसे अनुमति लेने का.
वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड.
नमस्कार.